अब आइए पढ़ते हैं दूसरे खंड का दूसरा अध्याय। पुरानी दिल्ली में दिसंबर महीने की एक सर्द सुबह में हिमालय में योगियों और साधुओं की खोज हेतु अपनी यात्रा की योजना बना रहा था, तभी मुझे एक पुराने विक्टोरियन शैली के भवन पर लगा एक विज्ञापन दिखा, विश्व योग सम्मेलन उसी दिन 9 बजे से नई दिल्ली में आरंभ हो रहा था। उत्साहित हो मैं शीघ्रता से वहां पहुंचा। क्रिस्टोफर हिल नामक एक अंग्रेज योगी ने भारत के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर इस विशाल और विख्यात कार्यक्रम का आयोजन किया था। आने वाले 4 दिनों में वहां गुरुओं, योगियों, लामाओं, पंडितों और ऋषियों का एक जमघट लगने वाला था, जिसमें वे सभी संसार को अपनी ज्ञान संपदा का वितरण करने वाले थे। कुछ भागीदार तो दशकों के तक जंगलों में एकांतवास करने के पश्चात अब आम जनता के सम्मुख आने के लिए तैयार हुए थे। सुबह से रात तक लगातार 7 विभिन्न स्थानों पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए थे। बाद में मुझे पता चला कि लगभग 800 से अधिक योगी इस सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे। मुझे अपने इस सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक विशाल शामियाने में मैंने हिमालय की तलहटी से आए एक योगी को छोटे बच्चों के माध्यम से हठयोग का विज्ञान सिखाते देखा। वे बच्चे विभिन्न मुद्राओं में आसन करके दिखा रहे थे, जिनके द्वारा मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था। एक बालक अपने सिर के पीछे अपनी टांगों को लपेटकर ओम जप कर रहा था, दूसरा अपनी भुजाओं पर खड़ा था और अपनी टांगें पीछे मोड़कर पैरों से सिर को छू रहा था, एक अन्य अपने सिर के बल स्थिर रहा था। लगभग 11 वर्ष के एक बालक ने कपड़े की एक लंबी पट्टी को निगला और आंतरिक सफाई के बाद उसे बाहर खींच लिया। एक और लड़के ने अपनी नासिका को साफ करने के लिए एक नाक में छोटी सी रस्सी डाली और उसे मुंह से खींचकर आगे पीछे करने लगा। मैं ये देखकर स्तिमित और विस्मित हो गया कि यदि बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार की शिक्षा दी जाए तो वे कितनी सरलता से ये सब कर सकते हैं। इन सब के दौरान उनके गुरुजी दर्शकों को प्रत्येक क्रिया के लाभ बता रहे थे। पहले दिन मेरे पास दक्षिण पूर्व एशिया के एक बौद्ध साधु आए। वो उम्र में मुझसे बड़े, छोटे कद और दुबले शरीर वाले थे। उनका सिर मुंडा था और उन्होंने नारंगी रंग का चमकीला चोगा पहन रखा था। प्रसन्न मुस्कान देते हुए उन्होंने अपना नाम भिक्खु विवेकानंद बताया। ये वो देखकर अत्यंत प्रभावित हुए कि एक अमरीकी युवा भगवान की खोज में है। सम्मेलन में हम दोनों एक दूसरे के निकट आ गए। भिक्खु थाईलैंड के एक मठ में हजारों मठवासियों के गुरु सदृश थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे एक लंबी यात्रा करके आए थे। यद्यपि उनकी अवस्था 50 वर्ष से ऊपर थी, फिर भी वे एक किशोर की भांति जिंदा दिल इंसान थे। योग सम्मेलन में घूमते हुए उन्होंने अपने मधुर थाई लहजे में मुझे बौद्ध दर्शन के विषय में बहुत कुछ बताया। इसी सम्मेलन में मैं पहली बार स्वामी राम से मिला, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी ऊंची कदकाठी, राजसी चाल, प्राचीन शैली के चोगे और चेहरे पर दिव्य तेजोमय व्यक्तित्व उनके प्रति आदर का भाव जागृत कर रहा था। उनकी आंखें गहरी और काली थीं तथा सलीके से सौरे कंधों तक लंबे सफ़ेद बाल थे। मैं उनके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक था, जैसा कि मैं सम्मेलन में आए अन्य योगियों के प्रति भी था। उनके शिष्यों से उनके बारे में पूछने के साथ साथ मैंने उनके आरंभिक जीवन की जानकारी देने वाली लगभग सभी उपलब्ध पुस्तकें पढ़ डाली। 1925 में हिमालय के पहाड़ों में बसे एक गाँव में जन्मे स्वामी राम बचपन से ही एक भ्रमणकारी का जीवन बिताते हुए ऋषि मुनियों के सान्निध्य में जंगलों में रहे। गूंजती एवं गहरी आवाज में उन्होंने बताया कि कैसे उनके गुरु ने उन्हें हिमालय के साधुओं के प्राचीन ज्ञान को पश्चिम में ले जाने का निर्देश दिया था। अपना पूरा प्रयास करो, स्वामी राम के गुरु ने उनसे कहा था, किंतु जब भी तुम अहंकारी बनोगे अथवा स्वार्थ भरा कार्य करने का प्रयत्न करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं कि जब भी तुम निस्वार्थी, प्रेममय और अहंकार मुक्त बनना चाहोगे, तुम पाओगे कि एक महान शक्ति तुम्हारे पीछे है और तुम कभी भी कुछ उत्तम पाने से वंचित नहीं रहोगे। योग की शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए स्वामी राम अनेक अमेरिकी चिकित्सकों को लाए थे। जब वे योग समाधि में चले गए तो चिकित्सकों ने उनके शरीर को जांच करने वाले तरह तरह के आधुनिक यंत्रों के साथ जोड़ दिया। स्वामी राम ने अनेक क्रियाओं का प्रदर्शन किया, जैसे वे अपने हाथ के बाई और एक स्थान पर 10 डिग्री तापमान बढ़ा सकते थे, अपने हृदय की धड़कन को केवल 50 सेकंड में 74% प्रति मिनट से गिराकर 52 तक ला जा सकते थे, निर्देशानुसार विशिष्ट मस्तिष्क तरंगों ब्रेन वेव के नमूने बना सकते थे, इच्छानुसार कमरे में रखी एक वस्तु को हिला सकते थे और यहां तक कि अपने हृदय की धड़कन को भी पूरी तरह से रोक सकते थे। समाधि से बाहर आकर स्वामी राम ने बताया, पूरा शरीर मन के भीतर है, चेतना पर नियंत्रण करके हम मन द्वारा जड़ पदार्थों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चय ही आप जो जानते हैं उस पर अमल करना आवश्यक है। अपने हाथ जोड़ते हुए उन्होंने आगे कहा, मैंने यह सब स्वयं को अतिमानवीय सिद्ध करने के लिए नहीं किया, अपितु इसके द्वारा मैं योग के विज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने आगे बताया कि योग का अभ्यास प्राचीन काल से किया जा रहा है एवं ये सबसे बड़ा विज्ञान है। ये न तो अंधविश्वास है और न ही सांप्रदायिकता पर आधारित है। ये सब प्रदान कर सकता है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक वर्णन तक नहीं कर सकते। ये वो विज्ञान है जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक जागृति की अनुभूति कर सकता है। मैं स्वामी राम से वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ था। जब मैं उनके आशीर्वाद मांगने गया तो उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग ही न्यू संतों के संग में पड़ेगी। उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए मुझे आशीर्वाद दिया, साधुओं का आशीर्वाद तुम्हें अपने मार्ग की सारी बाधाओं के पार ले जाएगा। हर रात में सम्मेलन स्थल के निकट एक बरगद पेड़ के नीचे अकेला सोता था। प्रातः एक बाज की आवाज से मेरी नींद खुल जाती, फिर पंख फैलाकर वो बाज अपने घोंसले से आकाश में ऊपर उड़ जाता। सम्मेलन भवन के द्वारों के खुलने की प्रतीक्षा में मैं उस पेड़ के नीचे दिल्ली की तेज हवा में ध्यान लगाता। सम्मेलन का अंतिम सत्र नई दिल्ली के सबसे बड़े सभागृह विज्ञान भवन में हुआ था। 3000 व्यक्ति उस शाम योगियों से ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां एकत्र हुए थे। सम्मेलन के संचालक क्रिस्टोफर हिल ने हमें स्मरण कराया कि ये हमारा परम सौभाग्य था कि हम इतने सारे गुरुओं के साथ एक कक्ष में उपस्थित थे। फिर हमें आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि कार्यक्रम का अंत सायं 7 बजे के निर्धारित समय पर ही होगा। उस समय हमें मालूम नहीं था कि उन्हें धमकी मिली थी कि उन्हें और अन्य स्वामियों को कट्टरपंथियों द्वारा रात्रि 8 बजे गोली से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे संभव था कि इतनी स्वामियों और योगियों का कार्यक्रम सही समय पर समाप्त हो जाए, वो भी भारत में? जब यह स्पष्ट हो गया कि सबको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, एक योगी उछलकर खड़ा हुआ और उसने श्रीमान हिल पर गालियों की झड़ी लगा दी। हिल ने सभी उपस्थित लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सभा में तनाव बढ़ने लगा। 7 बजने से कुछ मिनट पहले क्रिस्टोफर हिल ने घबराते हुए माइक्रोफोन अपने हाथ में लिया और एक क्षण शांत खड़े रहकर घोषणा की कि सम्मेलन की समाप्ति का समय आ गया है। एक स्वामी जी अंतिम ओम का उच्चारण करने लगे। मैं जानता था कि ओम एक ऐसी दिव्य ध्वनि है जो हमारी चेतना को भगवान के साथ जोड़ती है। उस नियमानुसार हुए समापन के उन लोगों को क्रोधित कर दिया जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला था। ओम के उच्चारण के बीच ही अफरा तफरी मच गई और कुछ योगी माइक पकड़ने के लिए लड़ने लगे। एक के हाथ में माइक आ गया और वो धधकती आंखों से साथ एक सजे नेता के समान अनाप शनाप बोलने लगा। भौंचक के दर्शक मंच पर चल रहे योगियों के युद्ध को देख रहे थे। क्या यही वे लोग थे जो विश्व में शांति और एकजुटता लाने वाले थे? कोई नहीं जानता था कि क्या कहे या क्या करें। भिक्कू विवेकानंद और मैंने सिर हिलाया, मेरी मासूम आशाओं पर पानी फिर गया था। अंततः क्रिस्टोफर हिल ने बहादुरी से माइक पकड़ा और सॉकेट से उसकी तार खींच दी, फिर वे मंच के पीछे गायब हो गए। सम्मेलन समाप्त हो गया। कार्यक्रम के पश्चात उत्पात मचे सभागृह के निकट एक शांत हॉल में मेरी मुलाकात एक लंबे पतले व्यक्ति से हुई। उनके लंबे सफ़ेद बाल एवं बड़ी दाढ़ी थी तथा उन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका व्यक्तित्व सम्माननीय था और वे पवित्र ग्रंथों से साक्षात प्रकट हुए एक पौराणिक संत लग रहे थे। स्वामी सच्चिदानंद ने एक प्रसन्नचित्त मुस्कान और आह्लादित करती दृष्टि से मेरा स्वागत किया। वे हिमालय के प्रसिद्ध साधु स्वामी शिवानंद के शिष्य थे और उन्होंने योग के प्राचीन विज्ञान को पश्चिम में फैलाया था तथा संपूर्ण विश्व में उनके शिष्य थे। उनके अंतर्धर्मीय कार्यों का उद्देश्य सदैव अलग अलग धर्म के लोगों को आत्मा की एकता के आधार पर एकजुट करना था। पोप के साथ अपनी पहली मुलाकात में स्वामी सच्चिदानंद ने पोप की प्रशंसा की थी, क्योंकि पोप विश्व भर के ईसाइयों को एकजुट करने हेतु कार्य कर रहे थे। फिर तुरंत ही स्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं अब आप आगे आकर पूरे संसार को एकजुट करने का प्रयास करें, केवल ईसाई ही क्यों अपितु सभी को धार्मिक एकजुटता के नाम पर एक साथ आना चाहिए। प्रसिद्ध वुडस्टॉक रॉक फेस्टिवल में उनकी उपस्थिति ने उन्हें रातों रात वुडस्टॉक गुरु के रूप में अमेरिका में ख्याति दिला दी थी। समारोह के आयोजकों ने शांत वातावरण कायम करने की आशा से उनसे निवेदन किया कि वे अपने प्रवचन द्वारा समारोह का उद्घाटन करें। हेलीकॉप्टर से उड़कर आते हुए उन्होंने हजारों लाखों हिप्पियों को बताया कि कैसे ध्वनि ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है और अमेरिका पूरे विश्व को। उन्होंने अमेरिकी युवाओं से अपील की कि वे अपने संगीत से सुख और शांति कायम करें। उन्होंने कहा, आइए शांति के लिए न लड़ें अपितु पहले अपने भीतर शांति प्राप्त करें। विश्व योग सम्मेलन में मैंने ध्यान से देखा था कैसे उन्होंने उपद्रव के बीच भी अपनी शिष्टता और गरिमा को बनाए रखा था। अब कोमल स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, मुझे दुख है कि आपको यह झगड़ा देखना पड़ा। कृपया ध्यान रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के अलग अलग स्तर पर होता है। जहाँ तक साधकों की बात है तो हम ये आशा नहीं कर सकते कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण होगा। यदि हम दूसरों पर उनके दोषों के लिए अंगुली उठाते हैं तो हम स्वयं भी जंजाल में फंस जाते हैं। बेहतर होगा कि हम उन लोगों पर श्रद्धा रखें जिनका चरित्र अच्छा है और स्वयं अपनी योग साधना का पालन करते रहें। उनका स्वभाव शांत एवं संतुलित था और उनकी बोलने की धीमी एवं प्रभावपूर्ण शैली ने मुझे द्रवित कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा अस्तित्व वास्तव में आनंद, प्रेम और ज्ञान से भरा है, किंतु हमने अपनी पहचान देह और मन से कर ली है, इसलिए हम अपने मूल अस्तित्व को भूल चुके हैं। हम आरंभ में शुद्ध थे और बाद में हमने वो शुद्धता खो दी और तब हम भौतिक अस्तित्व में आए। उन्होंने कहा कि योग और धर्म का सार हमें अपने भुलाए हुए आध्यात्मिक स्वभाव के साथ पुनः जोड़ना है। योग शुद्धिकरण की एक विधि है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने वास्तविक स्वभाव की पुनः प्राप्ति हेतु हमें स्वार्थपरक इच्छाओं पर चिंतन करने की अपनी मानसिक वृत्ति को जीतना होगा। हमारी सभी चिंताओं और परेशानियों का एक ही कारण है, हमारी स्वार्थी प्रवृत्तियां। अपने वास्तविक स्वभाव की अनुभूति करने हेतु जो मार्ग उन्होंने दिखाया था उसे इंटेग्रल योगा के नाम से जाना जाता है, जो छह योगा पद्धतियों का संयोजन है। स्वामी सच्चिदानंद आध्यात्मिकता को एक व्यावहारिक अंतर्दृष्टि से पूर्ण और अक्सर विनोदपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते थे। कृतज्ञतापूर्वक मैंने उनसे जाने की अनुमति मांगी। स्वामी जी ने उठकर अपने पतले हाथ को सौम्यतापूर्वक उठाते हुए कहा, अपनी साधना में गंभीर और अनुशासित रहो। सच्चा योगी वो है जो सर्वोच्च मानवीय आचरण के साथ रहता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और अपने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया, रिचर्ड तुम बहुत दूर से आए हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें अपने हृदय की निधि प्राप्त हो। उस रात भिक्खु विवेकानंद और मैं विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता जे कृष्णमूर्ति का व्याख्यान सुनने गए। वहां हम एक बड़े पंडाल में रखी कुर्सियों की दूसरी पंक्ति में बैठ गए। तेजी से भर रहे उस पंडाल में लगभग 60 वर्ष की अवस्था के एक व्यक्ति हमारी बगल में आ बैठे। उनका नाम दिलीप था। क्या आप जे कृष्णमूर्ति के जीवन के विषय में कुछ जानना चाहेंगे, उन्होंने पूछा। वो मेरे शिक्षक हैं। हाँ कृपया बताइए, हमने उत्तर दिया। उन्होंने अपनी एक टांग दूसरी पर रखी और कुर्सी से अपना शरीर टिकाकर कहना, आरंभ किया। उन्होंने बताया कि कृष्णमूर्ति जी का जन्म दक्षिण भारत में 1865 में हुआ था, जब वे एक छोटे से बच्चे थे। उनकी प्रतिभा की पहचान एक विख्यात अतींद्रिय संपन्न अदृश्य घटनाओं को मानसिक शक्ति द्वारा देखने वाले चार्ल्स लीडबीटर ने की। लीडबीटर और थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख एनी बेजेंट दोनों ने मिलकर कहा था कि ये बालक उसी विश्वगुरु का संदेश वाहक है जिसने ईसा मसीह के माध्यम से अपना संदेश मानवता को दिया। एनी बेजेंट ने बच्चों को इंग्लैंड में शिक्षा दी और बाद में विश्व का भ्रमण किराया, वहां जहां हजारों लोगों ने उन्हें अपने अगले मसीहा के रूप में स्वीकारा और उनके नेतृत्व में ऑर्डर ऑफ द स्टार संस्था का निर्माण किया। जब वे 27 वर्ष के थे तो उन्होंने विधिवत रूप से एक सिद्ध गुरु की भूमिका स्वीकार की और शीघ्र ही वे 60,000 से अधिक सदस्यों द्वारा पूजित होने लगे। दिलीप आगे झुके, लेकिन 1926 में उन्होंने अपने गुरु के पद को त्याग दिया, अपने संप्रदाय को विघटित कर दिया और अचानक सभी खड़े हो गए क्योंकि जय कृष्णमूर्ति का मंच पर पदार्पण हो रहा था। उनकी अवस्था लगभग 75 वर्ष की रही होगी और उनका शरीर छोटा एवं छरहरा था। उन्होंने बढ़िया नेहरू जैकेट और ढीला पायजामा पहना था। उनके साफ चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ उनकी प्रौढ़ता को दर्शा रही थी और सफ़ेद बालों से वे एक विद्वान प्रतीत हो रहे थे। उनकी कोमल आंखें उत्साह से चमक रही थीं और उन्होंने ब्रिटिश अंग्रेजी पुट में सभा का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया, लेकिन शीघ्र ही वे क्रांति के लिए पुकारने लगे। मुट्ठी हिलाते हुए उन्होंने घोषणा की, इस देश में तुम्हारे पास बहुत अधिक गुरु हैं, वे ही तुम्हें बताते हैं कि क्या करना है, क्या सोचना है और क्या अभ्यास करना है। वे तानाशाह हैं। पंडाल में सन्नाटा छा गया। सत्य एक मार्गहीन स्थान है, किंतु योग आसन और प्राणायाम मनोशारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आश्रम और मठ मन के लिए एक बंदी शिविर के समान हैं। वे रुके और सीधे मेरी आंखों में देखने लगे। जब नियमों से बंधकर ध्यान किया जाता है तो वो ध्यान ध्यान नहीं रहता, अपितु पूर्णतः व्यर्थ और निरर्थक हो जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई जिसमें शैतान अपने एक मित्र के साथ घूम रहा था। दोनों ने एक व्यक्ति को सामने सड़क पर गिरी एक चमकीली वस्तु को उठाते हुए देखा। मित्र ने मुड़कर पूछा कि उस व्यक्ति को क्या मिला। शैतान ने उत्तर दिया, उसने सत्य को उठाया है। ये तो तुम्हारे लिए बुरा हुआ, मित्र ने कहा। बिल्कुल नहीं, शैतान ने उत्तर दिया, मैं इस सत्य के आधार पर एक पंथ बनाने में इसकी सहायता करूंगा। अपनी बात पर और जोर देने के लिए कृष्णमूर्ति ने आंखें बंद की और अपने प्रवचन को धीमा कर दिया। हमें अपने अंदर एक क्रांति लानी होगी, लेकिन यदि हमारा जीवन दिखावे से भरा है तो ये कैसे संभव होगा। वर्षों कार्यालय में बीता देना, एक सतही खोखला जीवन जीना। वे आगे झुके। किसी भी व्यक्ति को जागृति न तो किसी संस्था, पंथ, सिद्धांत, पुजारी या रीति रिवाज से मिल सकती है और न ही दार्शनिक ज्ञान अथवा मानसिक तकनीकों से। उसे इसकी खोज अपने मन के अंदर विद्यमान तत्वों को समझकर करनी होगी, अवलोकन से न कि बौद्धिक विश्लेषण या अंतरपरीक्षण से। मैं ये सोचकर कांप उठा कि इस प्रवचन का मेरे प्रिय भिक्खु विवेकानंद पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि वो एक संगठित मठ में रहते हजारों साधुओं का प्रमुख था और उन्हें ध्यान एवं पूजा सिखाना था। मैं उसकी ओर मुड़कर धीरे से बोला, भिक्खु, ये उन सभी सिद्धांतों पर आक्रमण कर रहे हैं जिनके लिए तुमने अपना जीवन समर्पित किया है, तुम्हें कैसा लग रहा है। भिक्खु की आंखें आश्चर्य से फैल गई और वो बोला, ये जो कह रहे हैं वो सत्य है। अचंभित हो मैंने पूछा, अभी तुम क्या करोगे भिक्खु। वो संजीदा हो गया, मुझे गंभीरता से इस विषय में सोचना होगा। अगले कुछ दिनों तक हमने कृष्णमूर्ति जी द्वारा दी गई व्याख्यान माला में भाग लिया जिसमें उन्होंने तर्क और अपने दृढ़ विश्वास की अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। यद्यपि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने और किसी भी तर्क का खंडन करने के लिए प्रसिद्ध थे, व्यक्तिगत रूप से वे नम्र, दयालु और हंसमुख थे। मैं उनकी शिक्षाओं पर गहनता से विचार करने लगा, पूर्व का अनुसरण किया। साहित्य ऐसे महान संतों के इतिहास से भरा है जिन्होंने पूरी तरह से अपने धर्म अथवा गुरु का अनुकरण किया है। मैं कैसे उन सभी को केवल एक व्यक्ति के साक्षात्कार के आधार पर अस्वीकार कर सकता था। फिर भी जय कृष्णमूर्ति ने ये विचार मुझमें बैठा दिया कि आध्यात्मिकता में दिखावे का कोई स्थान नहीं है, हमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना ही होगा। यदि हम बाह्य अनुष्ठानों से अत्यधिक आसक्त हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम उन अनुष्ठानों के आंतरिक उद्देश्य को ही भूल जाएंगे, जो है हृदय का शुद्धिकरण करना। एक दिन पीपल के पेड़ की छाया में भिक्खु के साथ बैठे हुए मैंने उससे पूछा, भिक्खु क्या तुमने निश्चय किया है कि आगे क्या करने वाले हो? अपनी अंगुली को अपने भिक्षापात्र के किनारों पर घुमाते हुए उसने कहा, हाँ रिचर्ड, मैंने सोच लिया है, मैं वापस थाईलैंड के अपने मठ में चला जाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा, तो कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के विषय में तुम्हारी क्या धारणा है? विचारों में खोए वो कुछ देखने लगा और बोला, मैं श्रीमान जय कृष्णमूर्ति का अनुसरण करूंगा। उसके होठों पर शरारत भरी छोटी सी मुस्कान खिल गई। तुम्हें बताऊं कैसे? हाँ अवश्य, मैं उस गुरु की शिक्षाओं को त्याग दूंगा जो हमें सभी गुरुओं और उनकी शिक्षाओं को त्यागने की शिक्षा दे रहा है, उसने अपनी मधुर थाई लहजे में हंसते हुए कहा। उसी दिन बाद में मैंने भिक्खु से विदा ली और पैदल चलते हुए कैनॉट सर्कस तक आ पहुंचा, जो दिल्ली का एक व्यापारिक केंद्र है। वहां मैं एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अमेरिका में अपने परिवार को एक पत्र लिखा। भारत जिस तरह से मुझे प्रभावित कर रहा है, मैं उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, आप सबके लिए मेरा हृदय में गहरा प्रेम है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक रहें। आपका रिचर्ड, नई दिल्ली, भारत, दिसंबर 1970। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कैनॉट सर्कस एक बड़े उद्यान को घेरता हुआ एक विशाल वृत्त है। वहां फुटपाथ पर घूमते हुए मेरा ध्यान एक हस्तलिखित साइन बोर्ड की ओर गया, SS ब्रजवासी एंड सन्स धार्मिक चित्र। सड़क के किनारे 8x10 का एक सैकड़ों चित्रों का ढेर लगा था। मैं उन्हें निकट से देखने के लिए लालायित हो उठा। चित्र ऐसी आकृतियों से भरे थे जो अजीब किंतु बहुत सुंदर थे। वे ऐसे झरोखों के समान थे जिनसे रंगों, रहस्यों और जादू से भरी एक अलग ही दुनिया की झलक दिख रही थी। मैं उनमें से एक को अपने पास रखना चाहता था जिससे मैं उस पर ध्यान लगा सकूं। जब मैंने अपने छोटे से बैग में देखा तो पाया कि मेरे पास मुश्किल से एक चित्र खरीदने के लिए पैसे थे। एक घंटे तक मैं वहां बैठकर चित्र चुनता रहा। उन चित्रों में एक सुंदर स्त्री का चित्र था जो अपनी 8 भुजाओं में तलवार, खड्ग और भाला पकड़े हुए शेर पर सवार थी। फिर एक अद्भुत गोलमटोल व्यक्ति था जिसका सिर हाथी का था और वो चूहे पर बैठा था। उस ढेर से और ढूंढने पर मुझे एक सुंदर नीले व्यक्ति का चित्र मिला जिसके 4 हाथ सुंदर आभूषणों से सुशोभित थे और जो अनेक फनों वाले नाक पर लेटा था। ध्यान में मग्न एक शांत योगी का चित्र था जिसके शरीर पर सांप लिपटे थे, सिर पर चांद टीका था और उसके बालों से जल की धारा बह रही थी। फिर एक साहसी बालक था जो मोर पर बैठा था और भाला पकड़े हुए था। मुझे एक विशाल बंदर दिखा जिसने मुकुट पहना था और जिसकी आंखें भक्ति से चमक रही थी। मुस्कुराते हुए अपनी हथेली में एक पर्वत उठाए वो सरलता से आकाश में उड़ रहा था। जब मैंने उस ढेर में और गहराई से ढूंढा तो मुझे एक व्यक्ति मिला जिसके 10-12 सिर थे। हर सिर अलग योनि का था और उसकी अनेक भुजाएं भी थी। बिभत्स व्यक्ति उड़ते हुए उसके जलते मुखों में प्रविष्ट होकर स्वाह हो रहे थे। ये कला मेरे वर्णन से परे थी और चित्र अविश्वसनीय। क्या ये परिकथाओं में से अथवा कल्पनाओं में से थे, ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये कला प्रेरणा से उत्पन्न हुई होगी। मेरे लिए उनमें से किसी एक को चुनना असंभव प्रतीत होने लगा। अचानक उन चित्रों के ढेर से एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने मुझे इस प्रकार से आकर्षित किया जैसा किसी अन्य ने नहीं किया था। उसका रंग नीला था, उसने अपने मुकुट में मोरपंख धारण किया था और नदी के किनारे सुंदर मुद्रा में खड़ा होकर वो बांसुरी बजा रहा था। उसके पीछे खड़ी एक सफ़ेद गाय प्रेम से निहार रही थी और पूर्णिमा का चंद्र मनमोहक वन को अपनी दूधिया चांदनी से नहला रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। चित्र में दिखाया व्यक्ति मानो मेरी संपूर्ण आत्मा में समा गया। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ? मुझे लगा वो मुझे पुकार रहा है, किंतु कैसे? ये तो मात्र एक चित्र था, और वो भी एक काल्पनिक व्यक्ति का जिसे मैं जानता भी नहीं था। एक पुरानी लिपि में नीचे उसका नाम लिखा था, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने दुकानदार को दे दिए, किंतु वे पूरे नहीं पड़े। वो मुस्कुराया और फिर भी उसने मुझे वो चित्र दे दिया, वो चित्र जिससे मैं अपनी आगे की संपूर्ण यात्रा में कभी विलग नहीं होने वाला था। किस व्यक्ति का चित्र था वो? आने वाले लंबे समय तक ये एक रहस्य बना रहा। यहाँ पे दूसरे खंड का दूसरा अध्याय समाप्त होता है।